नमस्कार दोस्तों, कहानियां सबके जीवन का अंग हैं। कुछ का तो जीवन ही कहानी है। इस त्रासदी के समय में मेरी कहानियों के माध्यम से यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकूं। इसी श्रृंखला में मेरी पहली कहानी सब्जियों की रेड़ी। डलहौजी के पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणों ने दस्तक दी। नीचे सारा संसार अभी तारों की छाओं में नींद के मजे ले रहा था, पर यहां भोर हो गई थी। चिड़ियों का कलरव चरम पर था। उनके बच्चे शोर मचाकर दाना मांग रहे थे। चीर के नुकीले पत्तों से छनकर धूप आ रही थी। दूर दिख रही हिमालय की कुछ चोटियां अब भी बर्फ से ढकी थी। खाना लगा दे, खेतों पर जाने में देर हो रही है, अपने दुशाले में कुछ और दुबकते हुए बलवंत सिंह बोले। शारदा जल्दी से एक थाली में कुछ मक्के की रोटियां रखकर ले आई। आज लौटते समय एक पेंसिल ले आना याद से, बलवंत जी ने मुस्कुराकर कहा। यह तो मैं कभी ना भूलूं, ले आऊंगा। जल्दी से उन्होंने रोटियां खाई, दूध पिया और अपना ठेला लेकर खेतों पर चले गए। इधर शारदा ने मोहन को आवाज लगाई, उठ जा बेटा, स्कूल ना जाना क्या? मास्टर जी सारा कुछ एक दिन में ही पढ़ा देते हैं माँ, मैं ना जा रहा स्कूल, बापू के साथ खेतों पर भेज दे, मोहन ने माँ से गुहार लगाई। शारदा ने खिड़की के पर्दे सरकाए और तेज रोशनी कमरे में आने लगी। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, स्कूल तो जाना पड़ेगा। मोहन माँ को बड़ा मानता था, वरना बाकी बच्चे भी घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और जंगलों में घूमते रहते, पर वह स्कूल जाता चाहे उसका कितना भी मन ना हो। हाँ, वापस आकर माँ से ढेर सारी शिकायतें करता। मास्टर जी ने ठीक से जवाब ना दिया, आज बिना समझाए अगला पाठ शुरू कर दिया। शारदा बेटे की सारी बातें सुनती, फिर कहती, कोई बात नहीं रे, स्कूल ने तो रामानुजन को भी इतिहास में फेल कर दिया था, तो लगा रहे। वह मोहन को कहानियां सुनाती। फिर दोनों घर के बागीचे की देखरेख में लग जाते। मोहन का वहां बड़ा मन लगता था। बलवंत भी सुबह 2-3 घंटे अपने खेतों में लगाते, वहां से ताजा सब्जियां लादकर दुकान पर ले जाते। सारा दिन ग्राहकों से मूल भाव करने के बाद जब वे रात को घर आते और मोहन को किताबों में डूबा देखते, उन्हें बड़ा सुकून मिलता। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी पुश्तैनी सब्जियों की खेती के काम में जुटे। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि सूट बूट में उनका बेटा किसी अच्छे शहर के दफ्तर में काम करे, ऊंची इमारतों में उनका उसका घर हो, और जब वह छुट्टियों में डलहौजी आए तो सभी उसे और उसकी चमचमाती गाड़ी को देखते रह जाएं। बलवंत को खाने पीने की कोई कमी ना थी। ईश्वर की कृपा से उसके घर का भंडार हमेशा भरा रहता। छोटे से परिवार में बड़ा प्रेम था। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अपने से बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं। कभी कभी इस कल्पना को लक्ष्य मानकर वहां तक पहुंचने की एक सीधी पर कठिन रेखा खींच दी जाती है। बच्चों को बिना गिरे, बिना भटके, बिना कुछ सोचे और बिना प्रश्न किए इसी रेखा पर चलना होता है, ताकि वे जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य से जा मिलें। पर यदि लक्ष्य ही हमारा ना हो तो उसे पाने का उत्साह किसे रहेगा? बलवंत ने भी सपने देखे अपने बेटे के लिए। मोहन ने एक रात अपने पिता से कहा, बाबा, यदि हम अपनी सब्जियां नीचे शहर तक पहुंचा सकें तो व्यापार में काफी वृद्धि होगी। दिनकर चाचा की गाड़ियां तो रोज शहर जाती हैं, यदि आप उनसे बात। ना ना, सब्जियों की रेड़ी में कुछ ना रखा है बेटा, तू केवल पढ़ाई कर। बेटे ने बड़े पते की बात की थी, पर कहीं पढ़ाई लिखाई से मन ना उचट जाए, इसलिए बलवंत ने उसे चुप करा दिया। अगले दिन फिर बलवंत तड़के ही घर से निकले। रास्ते में नंदन भाई मिले। आज वे अपनी साग सब्जियां दिनकर जी की गाड़ियों में लादकर पठानकोट भेज रहे थे। बलवंत को देखकर नंदन भाई कुछ झेप गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर संभलते हुए बोले, तो चल दुकान पर, मैं पीछे ही आ रहा हूं। नंदन की सब्जियों की दुकान थी। दोनों बचपन के दोस्त एक ही जैसे परिवेश में बड़े हुए थे। वे दोनों आपस में सुख दुख साझा करते और एक दूसरे की सुनते भी खूब थे। परंतु कुछ दिनों से बलवंत को लग रहा था कि नंदन उनसे कुछ कट से गए हैं। उन्होंने एक दो बार पूछने की कोशिश की, पर नंदन टाल जाते। हाँ, रह रहकर कहते, मोहन की पढ़ाई तो ठीक चल रही है, देख ना छोरे स्कूल न जाकर जंगल में पूरा दिन भटकते रहते हैं। हम रेड़ी वालों के बच्चे तो कुछ भी कर लो रेड़ी ही लगाएंगे। बलवंत को यह बात चुभ जाती और वह मोहन को इस व्यवसाय से और दूर रखने की ठान लेते। जब नंदन दुकान पर आए, बलवंत ने पूछा, आज सब्जियां कहाँ भेज दी? नंदन बचते हुए बोले, थोड़ी पठानकोट भेजी है भाई, वो छोड़ो ग्राहक आने लगे हैं। रात हुई तो दोनों दुकान बढ़ाकर घर की तरफ चले। रास्ते में कई बार नंदन रेड़ी वालों के बच्चों की बातें करते रहे। धीरे धीरे मोहन बड़ा हो गया। उस शांत समझदार व सजीले नवयुवक को जो भी देखता कहता, यह बालक एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा, एक बार बस गांव से निकलने का मौका मिल जाए बस। सभी उसके बड़े शहर जाने की जैसे बाट जोह रहे थे। बलवंत को भी बेटे से बड़ी उम्मीदें थी। मोहन ने पिता के सपनों को ही अपना बना लिया था, पर शारदा जानती थी कि उसके बेटे की खुशी सब्जियों के खेतों और अपने व्यापार में है। उसने शहरों के विषय में सुना बहुत था, पर उसे अपने गांव से कोई शिकायत ना थी। एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कॉलेज से पूर्ण छात्रवृत्ति का पत्र आया। घर से जाते समय मोहन को ऐसा लगा जैसे अब वहां के सुंदर पर्वत, पेड़ पौधे, जंगल, झील और माँ का साथ सब छूट जाएंगे। माँ ने कहा कि यदि कुछ नया सीखने जा रहा है तो शिक्षा हमेशा ही दिशा दिखाती है बेटा, अपने निर्णय स्वयं लेने का पल देती है, हमेशा काम आती है, सो खुशी से जा और दृढ़ बनकर वापस आना। मोहन ने जाते समय माँ से मजाक किया, माँ बनूंगा तो मैं सब्जी की रेड़ी वाला ही। दोनों इस बात पर बड़ी देर तक हंसते रहे। 2 वर्ष बीत गए। बलवंत और शारदा बेटे की राह ताकते रहे। नंदन भाई ने इन 2 वर्षों में उन्हें बड़े पते की बातें बताई। वे कहते, दिल्ली जाकर बालक माँ बाप को तो भूल ही जाते हैं, गांव तो लौटना ही नहीं चाहते। देखा मोहन भी कहाँ आया जब से गया है, अपना बच्चा है सो दिल बैठा जाता है उसका सोचकर। सुना है और भी कई तरह की बुरी लत तो यूं पकड़ लेती है छोरों को वहां। बलवंत रोज रात डरे हुए घर आते और सब कुछ शारदा से कह देते। शारदा उनके पल पल परिवर्तित होते मुखमंडल को देखती और हंसकर केवल इतना कहती, बेटे पर भरोसा रखो, रोज फोन तो करता है, खुश भी लगता है, और जो फिर भी सवाल हो तो उससे पूछ लो। शारदा मुस्कुराती और बलवंत यह सोचकर चुप हो जाते कि वह गांव से बाहर तो कभी गई नहीं है, अक्कल भी कम है, इसे क्या पता बाहर की दुनिया कैसी है। शारदा बेटे को जानती समझती थी, सो वह सुकून से सोती थी और बलवंत रात भर दुनिया को समझने की कोशिश में जागते रहते। ऐसे में एक दिन मोहन का फोन आया कि पढ़ाई खत्म हो गई है और नौकरी भी मिल गई। उसी दिन अचानक किसी SBS ग्रुप ने बलवंत की दुकान खरीदने की पेशकश की। बलवंत बड़े खुश हुए। आज बड़ा शुभ दिन है नंदन भाई, बेटे की नौकरी लग गई और इस सब्जियों की रेड़ी से भी छुट्टी मिल गई मुझे। नंदन जबरदस्ती मुस्कुरा दिए। शाम तक बलवंत की दुकान पर SBS ग्रुप का बड़ा सा बोर्ड लग गया। 3-4 यूनिफॉर्म वाले लड़कों ने दुकान की जैसे काया ही बदल दी। शीशे की दीवार के पार साफ सुथरे रैक में सब्जियां सजाकर रख दी गईं। हिसाब किताब के लिए एक लड़का कंप्यूटर लेके बैठ गया। ग्राहकों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाने लगा और एक बड़ी सी मुस्कान लिए लड़के उनका स्वागत करते लगे। सारा दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। आसपास के सभी दुकानों का धंधा चौपट हो गया। बलवंत सहित सभी किसानों की सब्जियां इसी दुकान में जाती। बलवंत रोज देखते कि गाड़ियां भर भर कर सब्जियां नीचे भी भेजी जाती हैं। हर सब्जी पर SBS ग्रुप का स्टिकर लगा होता है। धीरे धीरे डलहौजी में SBS ग्रुप की और भी बड़ी दुकानें और होटल खुल गए। नौकरी कैसी चल रही है बेटा? बलवंत फोन पर मोहन से अक्सर पूछा करते थे और वो कहता, अच्छी बाबा, बहुत अच्छी। मोहन को नहीं बताया था कि दुकान बेच दी, वरना वो बड़ा दुखी होता। और अब तो बलवंत भी दुखी थे। पुश्तैनी दुकान अपनी ना रही, उसी की वजह से तो लोग उन्हें डलहौजी में जानते थे। ऐसा लगता था बरसों की पहचान कुछ दिनों में ही खो दी हो। वे खेतों पर काम करते, सब्जियां SBS ग्रुप की गाड़ियों पर लादते और घर आ जाते। बलवंत धीरे धीरे बुझ से गए। अब तो वे भी चाहने लगे थे कि मोहन घर आकर खेत ही संभाले। एक दिन पता चला कि SBS ग्रुप के मालिक डलहौजी आने को हैं। बलवंत ने सोचा कि देखे तो कौन है, इतने बड़े आदमी ने मेरी ही दुकान क्यों खरीदी। बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला पहाड़ों की घुमावदार रास्तों पर बड़े शान से चला। दुकान के आगे उस व्यक्ति को देखने की भीड़ सी लग गई जिसने डलहौजी पर कब्जा कर लिया था। शारदा की नजरें भी आज घर के सामने से जा रही सड़क से हट नहीं रही थी। तभी गाड़ियों ने मॉल रोड का रास्ता छोड़ा और कच्ची सड़क पर उतर गई। बलवंत के घर के सामने रुकी सबसे आगे गाड़ी में से कुछ लोग उतरे। शारदा दौड़ती हुई बाहर आई। मोहन ने माँ को सीने से लगा लिया। बाबा कहाँ हैं? शारदा मुस्कुराकर बोली, दुकान गए हैं मालिक को देखने। मोहन ने अपने कर्मचारियों में से एक को उन्हें लाने को भेज दिया। बलवंत एक गाड़ी में बिठाकर घर लाए गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सो उन्होंने नंदन भाई का हाथ सारे रास्ते पकड़ के रखा। घर पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने मोहन को देखा वे सब कुछ समझ गए। लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, तू मालिक है? मोहन ने दौड़कर पिता के पांव छुए। बाबा आप ना समझे, शारदा बलवंत सिंह ग्रुप ही SPS ग्रुप है। पर बाबा बना तो मैं रेड़ी वाला ही, अपनी सब्जियां ना छोड़ी मैंने। शारदा मुस्कुरा रही थी। पूरे डलहौजी के होठों पर बलवंत के बेटे का नाम था और बलवंत को आज पहली बार अपने बेटे से कितना कुछ सुनना था, पूछना था। यदि इस कहानी से आप स्वयं को जोड़ पाए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्रोत्साहन ही मुझे नई कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देगा। एक और कहानी के साथ जल्दी ही पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।